एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं डेविड मैककलो की लिखी एक बहुत ही शानदार जीवनी जॉन एडम्स के बारे में। ये किताब पुलित्सर पुरस्कार जीत चुकी है।
हाँ, 2001 में आई थी ये किताब, और कमाल की बात यह है कि मैककलो ने 7 साल लगाए इसे लिखने में। हजारों पत्र दस्तावेज खंगाले एडम्स परिवार के।
बाप रे, 7 साल तो जाहिर है गहराई तो होगी। हमारा इरादा आज यही है कि इस भारी भरकम किताब से कुछ सबसे अहम बातें, कुछ दिलचस्प किस्से निकालकर सामने रखें।
बिल्कुल, जॉन एडम्स नाम सुनते ही शायद ज्यादातर लोगों को अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति याद आते हैं। 1735 से 1826 तक का उनका जीवन।
हाँ, पर मैककलो दिखाते हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक वकील, एक राजनयिक, एक विचारक थे और अमेरिकी क्रांति के एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले नायक।
सही कहा, उनकी कहानी भी तो देखिए। एक साधारण किसान के बेटे से अमेरिका के संस्थापकों में से एक बनना, ये कोई मामूली सफर नहीं था।
और यही शायद इस किताब की खासियत है ना? मैककलो एडम्स को कोई देवता या सिर्फ एक ऐतिहासिक मूर्ति की तरह नहीं दिखाते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें एक इंसान की तरह पेश करते हैं। जैसे वो बताते हैं कि एडम्स छोटे कद के थे, कभी कभी गुस्सैल भी हो जाते थे, न्यू इंग्लैंड के ठेठ निवासी, लेकिन साथ ही उनमें एक गजब की सच्चाई थी, एक बौद्धिक ईमानदारी।
जॉर्ज वॉशिंगटन की वो शांत भव्यता या थॉमस जेफरसन की वो दार्शनिक बातें, एडम्स उनसे काफी अलग थे।
हाँ, मैककलो का तर्क है कि एडम्स शायद सबसे ज्यादा इंसानी लगते हैं उन संस्थापक पिताओं में, और उनकी कहानी आज भी बहुत प्रासंगिक है।
क्यों? आज के दौर में उनकी कहानी क्यों मायने रखती है?
क्योंकि ये दिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं है, ये जमीन पर सिद्धांतों के लिए लगातार लड़ने का नाम है। ये कहानी है चरित्र की, लोकप्रियता के दबाव की और उसूलों पर टिके रहने की जद्दोजहद की।
30 अक्टूबर 1735 को मैसेच्यूसेट्स के ब्रेन ट्री में।
हाँ, जो अब क्विंसी कहलाता है। उनके पिता जॉन एडम्स सीनियर किसान थे, लेकिन साथ ही अपने समुदाय में काफी सम्मानित व्यक्ति थे। माँ थी सुजैना बॉयलस्टन एडम्स।
और उस माहौल में प्यूरिटन मूल्यों का बड़ा असर था।
बिल्कुल।
मतलब कड़ी मेहनत, पढ़ाई लिखाई का महत्व।
बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी पर बहुत जोर था। पिता से उन्हें मेहनत की इज्जत करना और एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को समझना, ये बातें विरासत में मिली।
पर सुना है शुरुआत में उन्हें पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, खेतों में काम करना पसंद था।
हाँ, ये दिलचस्प बात है। मैककलो बताते हैं उनके पिता ने फिर एक तरीका निकाला, उन्हें दिन भर खेत में खूब मेहनत करवाई।
अच्छा।
हाँ, और उस अनुभव से युवा एडम्स को समझ आया कि भाई पढ़ना लिखना कोई सजा नहीं, बल्कि ये तो अफसरों का दरवाजा खोलता है। फिर वो खुशी खुशी किताबों की तरफ लौटे। ये उनके चरित्र निर्माण का एक अहम पल था, अनुभव से सीखना।
और फिर 15 साल की उम्र में हार्वर्ड कॉलेज काफी जल्दी पहुंच गए।
हाँ, वहां नए विचारों से सामना हुआ, एनलाइटनमेंट, क्लासिकल साहित्य, प्रोफेसर जॉन विंथ्रोप जैसे लोगों का असर पड़ा। लेकिन यहां भी उन्होंने अपनी अलग सोच दिखाई। परिवार चाहता था पादरी बने,
लेकिन उन्होंने चुना कानून का रास्ता।
बिल्कुल, अपनी मर्जी से। फिर कानून की पढ़ाई के बाद कुछ वक्त पढ़ाया भी, फिर अपने गृहनगर ब्रेंट्री में वकालत शुरू की।
इससे उन्हें आम लोगों को समझने का मौका मिला होगा।
यकीनन, उनकी मुश्किलें, उनकी उम्मीदें, और वो डायरी लिखते थे लगातार। उसमें उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके नैतिक संघर्ष, सब कुछ झलकता है।
और फिर 1764 में उनकी शादी हुई अबिगेल स्मिथ से। ये रिश्ता बहुत खास माना जाता है।
ओ हाँ, अबिगेल सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी बौद्धिक साथी थी, सबसे बड़ी सलाहकार, मुश्किल वक्त में उनका सहारा। उनके बीच जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, वो तो अमेरिकी इतिहास का खजाना है।
उनका सार्वजनिक जीवन कैसे शुरू हुआ?
असल में 1765 के स्टैम्प एक्ट के विरोध से। ये वो टैक्स था जो ब्रिटिश संसद ने बिना पूछे अमेरिकी उपनिवेशों पर लगा दिया था।
हाँ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला मामला।
बिल्कुल, एडम्स ने इसके खिलाफ जोरदार लेख लिखे, खासकर उनका वो कैनन और सामंती कानून पर शोध प्रबंध। इससे वो एकदम से चर्चा में आ गए, प्रतिरोध आंदोलन की एक मजबूत आवाज बन गए।
और इसके बाद आया 1770 का बोस्टन नरसंहार मुकदमा। ये तो बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
बहुत बड़ा। हुआ ये कि ब्रिटिश सैनिकों की गोली से कुछ नागरिक मारे गए। पूरे बोस्टन में जबरदस्त गुस्सा था, लोग सैनिकों को सजा दिलाना चाहते थे।
और ऐसे माहौल में एडम्स ने उन सैनिकों का केस लड़ा।
हाँ, सोचिए जरा, सब लोग सैनिकों के खिलाफ थे और एडम्स उनका बचाव करने खड़े हो गए। ये बहुत ही अलोकप्रिय कदम था।
क्यों किया उन्होंने ऐसा?
उनका मानना था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी नापसंद क्यों ना हो। न्याय भावनाओं से नहीं, सबूतों से होना चाहिए। ये उनके नैतिक साहस का, मतलब कमाल का उदाहरण था।
इस केस से उनकी साख बढ़ी होगी, भले ही कुछ लोग नाराज हुए हों।
हाँ, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ये साबित हुआ कि वो उसूलों के लिए भीड़ के खिलाफ जाने से डरते नहीं, और इसके बाद ही उन्हें कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के लिए चुना गया।
ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस क्या थी, थोड़ा सा बताएं।
ये बेसिकली 13 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग थी। वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ मिलकर रणनीति बनाते थे। एडम्स 1774 से 78 तक इसके बहुत सक्रिय सदस्य रहे,
और यहीं पर वो आजादी के बड़े पैरोकार बने,
सबसे जोरदार। उन्हें तो मजाक में अमेरिकी स्वतंत्रता का एटलस कहा जाने लगा। मतलब जैसे एटलस दुनिया का बोझ उठाता है, वैसे ही एडम्स आजादी के विचार का बोझ उठा रहे थे।
स्वतंत्रता की घोषणा का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी में भी थे वो।
हाँ, हालांकि लिखने का मुख्य काम थॉमस जेफरसन ने किया, पर कहते हैं कि एडम्स ने ही जेफरसन को राजी किया था कि वो लिखें।
क्रांति के बाद उन्होंने राजनयिक के तौर पर भी काम किया।
हाँ, बहुत अहम भूमिका निभाई। फ्रांस गए, फिर नीदरलैंड्स गए, जहां उन्होंने अमेरिका के लिए एक बहुत जरूरी कर्ज हासिल किया। उस वक्त पैसे की सख्त जरूरत थी।
ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी।
बिल्कुल। फिर वो ग्रेट ब्रिटेन में अमेरिका के पहले राजदूत बने। और हाँ, पेरिस संधि, जिसने क्रांति खत्म की और अमेरिका की आजादी को मान्यता दी, उस पर साइन करने वाली टीम में भी थे।
तो यूरोप में रहने का भी उन पर असर पड़ा होगा।
हाँ, मैकडोनल लिखते हैं कि वहां की राजशाही और ऊंच नीच देखकर उन्हें अपने देश अमेरिका के गणतांत्रिक मूल्यों की कदर और बढ़ गई।
फिर 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने और एडम्स पहले उपराष्ट्रपति।
हाँ, दो कार्यकाल तक रहे वो उपराष्ट्रपति। हालांकि उन्हें यह पद कुछ खास पसंद नहीं था। वो मजाक में कहते थे कि ये इंसान का बनाया सबसे महत्वहीन पद है। हाँ, लेकिन ये उनके लिए सीखने का दौर था। सरकार कैसे चलती है, ये उन्होंने करीब से देखा।
और फिर 1797 में वो खुद राष्ट्रपति बन गए। उनका कार्यकाल कैसा रहा?
चुनौतियों से भरा हुआ। सबसे बड़ी चुनौती थी फ्रांस के साथ बिगड़ते रिश्ते। एक तरह का अघोषित नौसैनिक युद्ध चल रहा था, जिसे क्वासी वॉर कहते हैं।
और इसी दौरान वो विवादास्पद एलियन और सेडिशन एक्ट्स भी आए थे।
हाँ, ये कानून काफी विवादों में रहे। एलियन एक्ट्स ने अप्रवासियों के लिए नागरिक बनना मुश्किल कर दिया, और राष्ट्रपति को खतरनाक समझे जाने वाले विदेशियों को देश से निकालने का अधिकार दे दिया।
और सेडिशन एक्ट?
सेडिशन एक्ट ने सरकार के खिलाफ कह लीजिए झूठी, निंदात्मक या दुर्भावनापूर्ण बातें छापना या बोलना अपराध बना दिया।
ओहो, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले जैसा लगता है।
बिल्कुल। आलोचकों ने यही कहा। उन्हें लगा कि ये कानून असहमति को दबाने और राजनीतिक विरोधियों, खासकर जेफरसन के समर्थकों को चुप कराने के लिए थे। ये एडम्स की प्रेसिडेंसी पर एक दाग माने जाते हैं। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था।
फिर 1800 के चुनाव में वो जेफरसन से हार गए।
हाँ, और उसके बाद वो अपने फार्म पीस फील्ड लौट गए, क्विंसी में। कई लोगों ने सोचा कि बस अब इनका सार्वजनिक जीवन खत्म।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
नहीं, मैक्लून दिखाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन उनके लिए शायद सबसे ज्यादा बौद्धिक रूप से फायदेमंद रहा। उन्होंने खूब पढ़ा, खूब लिखा।
और वो जेफरसन के साथ उनकी दोस्ती फिर से शुरू हुई, ये कैसे हुआ?
हाँ, ये कमाल की बात है। 1812 में राजनीतिक दुश्मनी के कारण सालों से बातचीत बंद थी, लेकिन फिर उनके बीच चिट्ठू का सिलसिला शुरू हुआ।
दो पुराने दुश्मन फिर से दोस्त बन गए।
बिल्कुल। अगले 14 साल अपनी मौत तक उन्होंने एक दूसरे को 150 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी। उनमें उन्होंने क्रांति, फिलॉसफी, धर्म, अपने अनुभव, सब पर बातें की। ये अमेरिकी इतिहास का एक अनमोल संवाद है।
और अपने आखिरी सालों में उन्होंने अपने बेटे जॉन क्विंसी एडम्स को भी राष्ट्रपति बनते देखा।
हाँ, ये भी उनके लिए बड़ी बात थी। और फिर वो तारीख 4 जुलाई 1826, अमेरिका की आजादी की घोषणा के ठीक 50वीं साल गिरा।
उसी दिन उनकी मृत्यु हुई, और जेफरसन की भी।
हाँ, अविश्वसनीय संयोग है। जेफरसन की मृत्यु कुछ घंटे पहले हुई थी वर्जीनिया में। कहते हैं एडम्स के आखिरी शब्द थे, थॉमस जेफरसन जिंदा हैं। शायद उन्हें पता नहीं चला कि जेफरसन जा चुके थे।
क्या कहानी है। अच्छा, अब थोड़ा उनके विचारों, उनके मूल दर्शन पर आते हैं। मैक्विलो ने कैसा विचारक बताते हैं?
एडम्स का दर्शन किताबी नहीं था, वो इतिहास, कानून और इंसानी फितरत की गहरी समझ पर आधारित था। और दिलचस्प बात यह है कि वो मानव स्वभाव को लेकर थोड़े निराशावादी थे।
अच्छा, मतलब?
उनका मानना था कि इंसान सत्ता, जुनून, स्वार्थ के चक्कर में आसानी से भटक सकता है, भ्रष्ट हो सकता है।
तो फिर वो एक गणराज्य, एक रिपब्लिक की सफलता में कैसे यकीन करते थे, अगर इंसान पर भरोसा नहीं था तो?
यही तो उनकी सोच का खास पहलू है। क्योंकि वो इंसानी कमजोरियों को समझते थे, इसीलिए वो मजबूत सरकारी ढांचे के हिमायती थे। शक्तियों के बंटवारे पे जोर देते थे, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं।
यानी सरकार के अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर नजर रखें।
बिल्कुल, राष्ट्रपति, कांग्रेस, अदालतें कोई एक बहुत ताकतवर न बन जाए। उनका मानना था कि सिर्फ लोगों की अच्छाई के भरोसे नहीं बैठ सकते, सिस्टम ऐसा हो जो लगाम कसकर रखे।
और कानून के शासन पे उनका अटूट विश्वास था।
हाँ, एक वकील होने के नाते ये उनके लिए सबसे ऊपर था। एक लिखा हुआ संविधान हो, अदालतें आजाद हों, सबको निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया मिले, यही सोच थी जिसने उन्हें बोस्टन नरसंहार में सैनिकों का बचाव करने पर मजबूर किया था।
और वो सिर्फ आदर्शवादी नहीं थे, प्रैक्टिकल भी थे।
हाँ, मक्कुलो इसे व्यावहारिक आदर्शवाद कहते हैं। मतलब ऊंचे सिद्धांत जरूरी हैं, पर उन्हें असल दुनिया में अपूर्ण इंसानों के बीच कैसे लागू किया जाए, ये भी सोचना होगा। उन्होंने 1780 में मैसाचुसेट्स का संविधान लिखा था, जो इसी संतुलित सरकार का बढ़िया उदाहरण है। वो आज भी लागू है।
उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? क्या चीज उन्हें चलाती थी?
मैकुलो दिखाते हैं कि हाँ, उन्हें पहचान, सम्मान की चाहत थी, जिसे वो फेम या प्रतिष्ठा कहते थे। लेकिन ये सिर्फ अहंकार नहीं था, उन्हें विश्वास था कि उनका काम महत्वपूर्ण है, इतिहास उसे याद रखेगा।
और उनकी प्यूरिटन पृष्ठभूमि का भी असर था।
बहुत गहरा कर्तव्य की भावना, कि अगर आपको प्रतिभा मिली है, मौके मिले हैं, तो समाज की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, भले ही इसके लिए त्याग करना पड़े।
और सच बोलने का जुनून।
ओ हाँ, सच और ईमानदारी। उन्होंने मुश्किल सच को आसान समझौते पर हमेशा तरजीह दी। उनका वो मशहूर कोट है ना, बोस्टन नरसंहार केस के दौरान कहा था, फैक्ट्स आर स्टबन थिंग्स, तथ्य जिद्दी होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता।
मुश्किलों का सामना कैसे करते थे वो?
गजब की सहन शक्ति थी उनमें, और वो पीछे नहीं हटते थे। जब आलोचना होती तो वो और ज्यादा मेहनत करते, और पढ़ते, और लिखते। आलोचकों की बातों को भी वो ध्यान से सुनते थे, उनका विश्लेषण करते थे।
चलिए अब उन तीन खास मोड़ों पर बात करते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी और विरासत पे सबसे ज्यादा असर डाला। पहला तो हम बात कर ही चुके हैं, बोस्टन नरसंहार के सैनिकों का बचाव 1770 में।
हाँ, वो पहला बड़ा मोड़ था, उनके उसूलों की पहली बड़ी परीक्षा। सबके खिलाफ जाकर उन्होंने कानून को भीड़ की भावनाओं से ऊपर रखा। इससे उनकी अपनी ईमानदारी तो साबित हुई ही, एक सिद्धांत भी बना कि सच्ची देशभक्ति के लिए कभी कभी अलोकप्रिय भी होना पड़ता है, और उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली।
दूसरा निर्णायक मोड़ कौन सा था?
वो था 1775-76 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में आजादी के लिए उनका जबरदस्त संघर्ष। उस वक्त आजादी का ख्याल ही बहुत रेडिकल था, ज्यादातर लोग हिचक रहे थे, समझौते की उम्मीद कर रहे थे।
लेकिन एडम्स डटे रहे।
डटे रहे, बिना थके बहस की, तर्क दिए, लोगों को मनाया, वो उस मुहिम की जान बन गए थे।
और इसका नतीजा क्या हुआ?
इसने उन्हें मैसाचुसेट्स के एक प्रतिनिधि से उठाकर राष्ट्रीय नेता बना दिया। उनकी बहस करने की ताकत, उनकी राजनीतिक समझ, उनका इरादा, सब सामने आया। यहीं से उनकी भूमिका एक संस्थापक पिता के तौर पर पक्की हो गई।
और तीसरा अहम मोड़?
तीसरा मोड़ आया उनके राष्ट्रपति काल के अंत में, 1799-1800 में, जब उन्होंने फ्रांस के साथ शांति बनाए रखने का फैसला किया।
जबकि उनकी अपनी पार्टी युद्ध चाहती थी।
हाँ, उनकी फेडरलिस्ट पार्टी का एक बड़ा धड़ा, खासकर अलेक्जेंडर हैमिल्टन के असर वाला, फ्रांस से जंग चाहता था। एडम्स पर बहुत दबाव था।
लेकिन उन्होंने क्या किया?
उन्होंने युद्ध का ऐलान करने के बजाय शांति वार्ता के लिए एक मिशन फ्रांस भेज दिया। ये एक तरह से राजनीतिक खुदकुशी थी। उनकी पार्टी टूट गई, 1800 का चुनाव हारना लगभग तय हो गया।
पर उन्होंने ये क्यों किया?
क्योंकि उन्हें लगता था कि युद्ध देश के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने देश को पार्टी और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा।
तो फैसला उनके अपने लिए महंगा पड़ा, पर देश के लिए सही साबित हुआ।
बिल्कुल, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया उस फैसले से। लेकिन अमेरिका एक और बड़ी युद्ध से बच गया। इसने एक राजनेता के तौर पर उनकी विरासत तय कर दी, एक ऐसा नेता जो सही काम के लिए राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार था। बाद में उन्होंने कहा भी था कि वो चाहते हैं कि उनकी कब्र पर लिखा हो, यहां जॉन एडम्स लेटे हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर 1800 में फ्रांस के साथ शांति स्थापित की।
एडम्स की जिंदगी से आज हम क्या सीख सकते हैं? ये किताब हमें क्या मानवीय सबक देती है?
बहुत कुछ। देखिए, एडम्स खुद अपने स्वभाव से जूझते थे, उनका चिड़चिड़ापन, पहचान पाने की उनकी इच्छा, ये याद दिलाता है कि महान लोग भी कमजोरियों से परे नहीं होते।
हाँ, ये बात उन्हें ज्यादा रिलेटेबल बनाती है।
बिल्कुल, उनका राजनीतिक गुटबाजी का सामना करना, या ये महसूस करना कि उनके काम को तवज्जो नहीं मिल रही, ये अनुभव आज भी कितने जाने पहचाने लगते हैं।
और कौन सी बातें हैं जो आज के लोगों को छू सकती हैं?
कई हैं, जैसे सिद्धांत और लोकप्रियता के बीच की कश्मकश, ये तो आज के नेता रोज झेलते हैं। फिर जॉन और एबिगेल की साझेदारी, एक मजबूत रिश्ते का क्या मतलब होता है ये दिखाती है।
हाँ, वो बराबरी का रिश्ता।
बिल्कुल। फिर 1800 की हार के बाद उनका दोबारा उठ खड़ा होना, रिटायरमेंट में भी एक सार्थक जीवन जीना, ये नाकामी के बाद हिम्मत ना हारने की मिसाल है। और जिंदगी भर सीखते रहने का उनका जुनून, पब्लिक लाइफ और फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाने की चुनौती।
तो ये कहानी परफेक्ट होने की नहीं बल्कि ईमानदार होने की है।
बिल्कुल सही कहा। उनकी कमजोरियां, उनका अहंकार, उनकी असुरक्षा, उनकी जिद, ये सब उन्हें हमारे जैसा बनाती हैं। वो दिखाते हैं कि जरूरी ये नहीं कि आप कभी गिरे ही नहीं, जरूरी यह है कि आप अपने उसूलों पर टिके रहें, खासकर तब जब ये मुश्किल हो।
इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर 3 खास बातें हमें जॉन एडम्स के जीवन से याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
पहली, एक भावनात्मक सीख हो सकती है जॉन और एबिगेल एडम्स का रिश्ता। ये सिर्फ प्यार नहीं, ये बौद्धिक बराबरी, आपसी इज्जत और मुश्किलों में अटूट साथ का एक टाइमलेस मॉडल है। ये दिखाता है कि साझा मूल्य कैसे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।
ठीक है, दूसरी?
दूसरी, एक बौद्धिक सीख, एडम्स का लीडरशिप का नजरिया, कि नेता का काम तात्कालिक लोकप्रियता पाना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले सिद्धांतों पर चलना है, चाहे कीमत चुकानी पड़े। और इंसानी फितरत की कमजोरियों को काबू में रखने के लिए कानून का राज और एक संतुलित सरकार, चेक्स एंड बैलेंसेस में उनका गहरा विश्वास, ये अमेरिकी सिस्टम की बुनियाद है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख।
तीसरी एक सार्वभौमिक सीख, यूनिवर्सल इंसाइट है, ईमानदारी का असली मतलब। ये सिर्फ सही बात कहना नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए कीमत चुकाने को तैयार रहना है, जैसे बोस्टन केस में या फ्रांस के साथ शांति के फैसले में उन्होंने किया। और साथ ही जिंदगी भर सीखने और बढ़ने की ताकत, करियर खत्म होने के बाद भी जीवन में मतलब ढूंढना, जैसा उन्होंने जेफरसन के साथ अपने अद्भुत पत्राचार में किया।
उनका जीवन शायद यही याद दिलाता है कि चरित्र, दृढ़ता और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, चाहे वो कितने भी अलोकप्रिय क्यों न हो, अंत में एक स्थायी विरासत बनाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।
निश्चित रूप से।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।